जो छह संस्थानों में केवल ज्ञान होने की बात आपने कही और शास्त्रों में ये भी बात लिखी है जिसके कुब्जक और हुंडक संस्थान होता है वो मुनि दीक्षा नहीं लेता है, उसको नहीं दी जाती, तो ये कैसा है? परंतु ये तो हम कर्णान योग के आधार से बता रहे हैं, क्योंकि जो संस्थान नाम कर्म का जो उदय है तो 13वें गुणस्थान में जो उदय की विच्छित्ति बताते हैं तो वहाँ तो छह संस्थानों की उदय की विच्छित्ति बताई, यानी वहाँ उदय है और उसके बाद 14वें में उसकी उदय की विच्छित्ति हो जाती है, इसका अर्थ है वो संस्थान नाम कर्म वहाँ है तो छह संस्थान वहाँ बनते हैं। एक तो होता है स्थूल कथन और एक होता है सूक्ष्म, कुछ कर्णान योग का जो विषय होता है तो उसमें वो उस विषय के आधार से उस आगम के आधार से हम ये कह सकते हैं, परंतु संहनन में ऐसा नहीं है। सहनन तो वज्र वृषभ नाराज ही होता है और जो सहनन जन्म से होता है वो तो कुछ बाद में बदलता नहीं है, तो ये बात निश्चित होती है कि कोई मिथ्या दृष्टि जन्म से है और बाद में वो सम्यक भी प्राप्त करेगा और उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा, तो वो किस सहनन के साथ आया हुआ होना चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सहनन से। तो ऐसा ही सहज उसका निमित्त नैमित्तिक बनता है कि जो जाने वाला है वो उसी सहनन से जन्मेगा, ऐसा नहीं कि उसका तो पुरुषार्थ मोक्ष का हो रहा है और सहनन के लिए रुक गया है। देखो शास्त्र में ऐसा भी कथन आता है, कोई बादर निगोद से, बादर की बात कर रही हूँ, बादर निगोद से मनुष्य में जन्म लेता है और उसी भाव में मोक्ष भी चला जा सकता है। हाँ वो शला का पुरुष नहीं हो सकता परंतु सामान्य केवली हो सकता है। तो जब वो बादर निगोद में से मनुष्य में आया है तो उसने मनुष्यायु बांधी, मनुष्य गति बांधी, वज्रश्रम नाराज सहनन वो कर्म भी बांधा और उसके साथ उसका जन्म हुआ है, यानी जिसकी जैसी परिणति है ना तो उसके उसके बाकी भी सारे परिणाम उसके कर्म बंधे वो सब सहज रूप से निमित्त नैमित्तिक पद्धति से बन जाते हैं। ये छह संस्थान तो होते हैं पर सहनन तो एक वज्रषभ नाराज ही होता है, उसके बिना क्षपक श्रेणी जीव नहीं मान सकता। क्षपक श्रेणी योग्य विशुद्धि उतनी आत्मस्थिरता अन्य सहनन वालों को नहीं होती, परंतु संस्थान उसमें बाधक नहीं है। उपशम श्रेणी के लिए उत्कृष्ट ऊपर के तीन सहनन चाहिए, कौन से ऊपर के तीन है बेटा? ये जो पहले ऊपर के जो तीन है वे ही उपशम श्रेणी मान सकते हैं और क्षपक श्रेणी वाले तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को ही होती है। ऐसा नहीं कि जिसको जिसको वज्र वृषभ नाराज सहनन है वो क्षपक श्रेणी मानेगा, हमने तो देखा है वो तो नरक में जाने वाला सातवें नरक में जाने वाले के भी वे होते हैं। ये भी देखा है कि भोगभूमि वालों को तो वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है परंतु उनके लिए एक ही रास्ता है, कौन सा? देवगति का। सारे मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाएंगे, भोगभूमि के सारे मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जन्मते हैं और भोगभूमि के सारे ही सम्यक दृष्टि सौधर्म और ईशान में जन्मते हैं, सम्यक के साथ जाएंगे तो ऐसा नियम है। ये कर्णान योग के कितने ही नियम ऐसे सहज होते हैं, उसमें कर्णान योग में क्यों ऐसा प्रश्न नहीं होता? वीरसेन स्वामी धौला में बहुत बार बता चुके हैं कि वस्तु का स्वरूप आपके क्यों के उत्तर देने के लिए कोई बाधित नहीं है। वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप होता है, इसको कहते हैं अहेतुवाद आगम, कोई हेतु नहीं होता है। कर्णान योग के तो कोई अकाट्य नियम होते हैं और उनको वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अभी अपना समय हो गया है ना, कि अभी टाइम है, बच्चे आ रहे हैं। हाँ
पूज्य गुरुदेव श्री के सीढ़ी प्रवचन में से एक प्रश्न और मुख्य बिंदु बताएं। संदीप चौगुले शास्त्री तिथि
मंगलाचरण निकालना। ओम नमः। सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् जं जस्सजम्मि देशे येन विहानेन जम्मि कालं मे नादं जिणेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्सतम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिणिन्दो वा एवं जोणिश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपज्जाये सो स्वतिष्ठि शुद्धो जो संकदिशो कुदिष्ठि। कारण कार्य रहस्य की चर्चा करते हुए हमने ये बात देखी थी, कार्य पर्याय को कहते हैं, जो द्रव्य है उसको सत कहा है। तो सत कैसा होता है, सत की परिभाषा क्या है बोलो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। फिर ये जो द्रव्य कैसा होता है, तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों का समूह तो पिंड तो द्रव्य है ही है, परंतु उस प्रत्येक गुण में प्रति समय यथा योग्य, यथा योग्य क्यों कहना, जो होने निश्चित है वही पर्याय होती रहती है। यह क्रम कहाँ से या कब से चल रहा है, अनादि से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो गुणों और पर्यायों के पिंड को, समूह को हम द्रव्य कहते हैं। इसी की बात ये निश्चित हो गई है, जैसे गुण द्रव्य में से अलग नहीं हो सकते, गुण तो एक साथ है ना, उसको क्या कहा है, क्रमवर्ती। गुणों को क्या कहते हैं, अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, और पर्याय क्रमवर्ती। गुण एक साथ है और पर्याय एक के बाद एक होती है। जैसे गुण एक साथ है हम उसको ऐसा कहेंगे तिर्यक, आपने सुने हैं दो शब्द, तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। क्या कहा बोलो, क्या कहा दो शब्द मैंने, कौन से कहे, ये नाम सुने हैं आपने, सुने हैं तो अच्छा है, मुझे कुछ अधिक बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुने हैं सबने, नहीं सुने। तिर्यक यानी आड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी एट ए टाइम, एक साथ। गुण कैसे है, एक साथ विद्यमान है, सभी गुण एक साथ है, यानी भावों की अपेक्षा वो उसका विस्तार हम कहेंगे, द्रव्य का विस्तार भाव की अपेक्षा कितना है, तो अनंत गुणों का पिंड है वो एक साथ विद्यमान है। और पर्याय कैसी होती है, एक के बाद एक के बाद एक। काल को हमेशा एक के ऊपर ऐसा बताया जाता है, नीचे से ऊपर तक, तो हम क्या कैसे बताएंगे उसको, अनादि से अनंत काल तक एक 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 पर्याय जो है, प्रति समय एक एक पर्याय हम ले लेंगे द्रव्य की, तो वो अनादि अनंत जो फैला हुआ है द्रव्य वो कैसा है, ऐसा सीधा नीचे से ऊपर तक, उसको कहेंगे ऊर्ध्व वर्टिकल। तिर्यक यानी हॉरिजॉन्टल, अंग्रेजी शब्द से आप परिचित हो तो, नहीं तो तिर्यक और ऊर्ध्व ये बात अच्छी है आपके लिए, समझ में आती है। द्रव्य का जो विस्तार है किसी एक समय में हम देखेंगे तो अनंत गुण उसमें है और उसको द्रव्य को, उसी द्रव्य को हम ऐसा काल अपेक्षा उसकी सापेक्षता सहित हम देखेंगे द्रव्य तो कितना लंबा फैला हुआ है, तो अनादि से अनंत काल तक फैला हुआ है। ख्याल में आती है बात, ये जो आती है ना बात, द्रव्य परिपूर्ण है, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से भी। आपने सुना हुआ होगा कि न द्रव्ये न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी और न भावे न, यानी द्रव्य जो है वो किसी अपेक्षा से उसका खंड नहीं होता, वो तो अभेद है। ये जो काल की अपेक्षा है, फोर्थ डायमेंशन, जैसे हम कहते वो थ्री डायमेंशनल वस्तु होती है, तो ये काल क्या है, उसकी फोर्थ डायमेंशन है। कि द्रव्य को हम देखना है तो वो अनादि अनंत फैला हुआ है, प्रसरा हुआ है, तो ये पूरा मिलकर द्रव्य कहलाएगा, इसलिए उसकी सभी पर्याय उसी में गर्भित है। ये हमने बात देखी थी। अब यहाँ जो हमारी बात हो रही है, अभावों की चर्चा हम कर रहे हैं। अभाव समझने के लिए ये जो कार्य है, पर्याय को कार्य कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय में पर्याय हो रही है, उसके प्रत्येक गुण की पर्याय हो रही है, वही उसका कार्य है। तो वो कार्य वर्तमान में होता है, द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है उसको हम वर्तमान पर्याय कहते हैं। भूत की पर्याय तो हो चुकी, वो द्रव्य में विलीन हो गई, उसको हम पारिणामिक भाव कहेंगे, वो वहाँ पर्याय रूप से अवस्थित नहीं है। तो किस रूप से पड़ी है, योग्यता रूप धर्म, जिसको हम द्रव्य ही कह देंगे। अब जो आने वाली पर्याय भी आई नहीं है, तो वो किस रूप से वहाँ है, पर्याय रूप से नहीं है, द्रव्य रूप से है, और वही अपने अपने समय पर पर्याय रूप से परिणमित होगी। जैसे आपने समुद्र तो देखा होगा या सुना भी होगा, उसकी पिक्चर भी देखी होगी, तो उसमें से एक एक लहर उत्पन्न होती है, नई नई। कहाँ से आती है, हवा में से, किस में से आती, पानी में से ही निकलती है। तो अभी तक किस रूप में थी, पानी रूप से थी, उसमें से वो लहर होती है, और फिर लहर किनारे पर आकर मिट जाती है, तो उसका क्या होता है, जमीन में घुस जाती होगी कि नहीं, क्या होता है उस लहर का, वो पानी ही हो जाते है, उसके पानी रूप रह जाती है अभी, अब वो लहर रूप नहीं रहती है, पानी रूप हो जाती है। वैसे ही द्रव्य में से हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, अभी तक कहाँ थी, द्रव्य रूप थी, अभी उत्पन्न हुई है, और फिर कहाँ समा जाती है, द्रव्य में ही समा जाती है, ख्याल में। तो ये जो कार्य है, ये जो पर्याय है, उसकी चर्चा चल रही है। हमने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो देखे। देखो यहाँ अभावों की चर्चा हो रही है जिनागम के आधार से। लौकिक में तो हम अभावों की चर्चा खूब करते हैं, दिन भर तो वही तो चलता है अपना, और वे अभावों की चर्चा करने से सुख होता होगा ना। लौकिक में जिन अभावों की चर्चा करते हैं, तो ये अभाव हमें बहुत खटकते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो क्या करना चाहते हैं, उन अभावों की पूर्ति करना चाहते हैं, और ऐसा सोचते हैं ये हमारे अभाव मिट जाए तो हम सुखी हो जाए। फिर वो मान लेते हैं, अपनी इच्छा से तो कुछ मिटते नहीं, जैसे हमारे पास पैसे का अभाव है, तो क्या करना चाहते हैं, वो अभाव को मिटाकर उसका संयोग प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो अपने अधीन नहीं होती बात, बाय चांस पूरी हो भी जाए तो हम क्या करते, दूसरे अभावों को ढूंढते रहते हैं। अरे अभी अपने के किसमें क्या क्या अभाव है, अभी हमको क्या क्या करना है, किन किन अभावों की पूर्ति करनी है, तो ये तो निरंतर आकुलता बनी रहती है। और ये जो जिनागम में जो अभी हम अभावों की चर्चा कर रहे हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, ये तो निराकुलता प्राप्त करने का साधन है। कैसे, अरे जहां अभाव है वहां तीन काल में अभाव रहने वाला है, उसमें माथा मारने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, नहीं एज इफ हम मार सकते और आप मत मारो, ये बात नहीं है, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जहां जिसका एंट्रेंस ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, वहां वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वहां देखने की जरूरत भी नहीं है, और वहां देखने की और उसको दूर करने की आकुलता नहीं रहेगी। जीव को निरंतर आकुलता, टेंशन किस बात की चल रही है, कि मैं ये परद्रव्य है, इसमें ये पर्याय अच्छी नहीं लगती, इसको कुछ बदल कर मैं दूसरी पर्याय लाऊं, या मेरे में अभी जो पर्याय है वो अच्छी नहीं लगती है, मैं दूसरी कोई पर्याय लाऊं, अभी तो मैं संसारी हूं, मेरे मुक्त दशा जल्दी लानी है। हमारे अनादि अनंत पर्यायों के क्रम में ये मोक्ष की पर्याय यहां लिखी है, किसी कोई लिखता नहीं है, केवल यह नहीं, यहां जानी है हमारे द्रव्य के ही त्रिकाल में यहाँ पड़ी है और हम यहाँ यहाँ लाना चाहते हैं, कौन से पुरुषार्थ से यहाँ आएगी? होगी ही नहीं, वो ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं होगा जो जिसको कहेंगे उस पर्याय का पुरुषार्थ करेंगे तो आएगी कि नहीं? ये कर्ता बुद्धि की सारी कल्पनाएं हैं। इन पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है ये स्वीकार करना, इसका निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। और जो ऐसा निर्णय का पुरुषार्थ करता है उसकी वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। समय से पहले होगी ये नहीं कहना चाहती हूं मैं, उसका पुरुषार्थ तभी प्रकटेगा जब उसका वो समय आने वाला है। ये सारी चर्चा तो हम समवाय, जो 5 समवाय है उसमें अधिक विस्तार से करेंगे। अभी तो अपना जो अभावों की बात चल रही है, तो ये जो हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो हमने देखे थे, अभी हमें आगे के जो दो है ना चीजें, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इनकी बात देखनी है। देखो अभाव क्या सूचित करता है, एक द्रव्य का तो दूसरे द्रव्य में अभाव है ही है, तो हम तो अपने को सुखी क्यों मान रहे हैं और किस चीज से मान रहे हैं कि पर संयोग से हम सुखी है, पर संयोग के कारण हम अन्यों से कुछ महान है ऐसा मानते हैं। क्यों? मेरे पास ज्यादा पैसे है तो मैं इनसे महान हूं, मेरे पास अमुक एक मेक की गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये बातें हैं, मेरे पास ये साधन है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, तो मैं अन्यों से अच्छा हूं और मैं सुखी हूं ऐसा मानते हैं। तो इन पर पदार्थों में अपना सद्भाव है कि अभाव है पहले नक्की करना है। क्या है? अभाव है। तो जिनमें अपना अभाव है उनके कारण मैं महान हो जाऊं, ये बात कैसे बन सकती? हमने अपने को महान क्यों माना है? शरीर के कारण, थोड़ी बहुत कुछ क्षोभसम बुद्धि है उसके कारण, पर पदार्थों के संयोग के कारण हमने अपने को मानना है महान, और हम निरंतर उसी को जुटाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। परंतु क्या जिनमें अपना अभाव है उनके कारण हम महान हो सकते हैं? क्योंकि हमने अपना स्वरूप नहीं पहचाना। ख्याल में, हम अभाव स्वरूप है कि भाव स्वरूप है? अपना भाव पहचानेंगे तो उसकी महानता भाषित होगी हमें। देखो हम विकल्प के नाम पर भी क्या आत्मा का ध्यान करना है तो कैसे करना? शरीर रूप में नहीं हूं, ये टेबल रूप में नहीं हूं, राग रूप में नहीं हूं, और क्या पर्याय रूप में नहीं हूं, तो आप शून्य रूप हो कि नहीं हो? आत्मा को शून्य मानने वाले भी है कोई मत? तो क्या हम अभाव स्वरूप है कि भाव स्वरूप है? ये पर पदार्थ की अपेक्षा हमने अभाव की बात की है, तो हम स्वयं की अपेक्षा तो परिपूर्ण भाव स्वरूप है। तो उस भाव स्वरूप, उस ज्ञानमय पना हमको अनुभव करना है तो उसके लिए हम कहां नहीं है उसकी भी बातें उसी के साथ साथ समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये कोई वस्तु सफेद है तो ज्ञान तो एट ए टाइम अस्ति नास्ति दोनों को जानता है, विधि और निषेध दोनों को जानता है। कैसे? ये सफेद है तो उसी समय ये निश्चित है ज्ञान में, ये काला नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, अन्य कोई हरा रंग का है ही नहीं है, ये सफेद है। कथन में तो हम एक बात कह रहे हैं पर ज्ञान ने जाना ना, ज्ञान तो अस्थि नास्ति दोनों को एट ए टाइम जान रहा है। जब हमने कहा कि ये हाथ है और ये पेपर है तो हमने ये पेपर पेपर है, पेपर हाथ नहीं है, ये पेपर अन्य कोई वस्तु नहीं है, पेपर पेन नहीं है, सभी बातें जान ली है। तो ज्ञान में तो ये होता ही है, कथन में तो हमें उसका क्रम पड़ेगा कि हम अस्थि को कहेंगे या नास्ति को कहेंगे। तो यहां हम जो अभावों की चर्चा कर रहे हैं, पर्यायों के तो अभाव की चर्चा हमने की, 6 द्रव्यों के वर्तमान पर्याय का, अपने अपने द्रव्य की पूर्व पर्याय में जो अभाव है उसको प्रागभाव कहेंगे, और सभी द्रव्यों का, द्रव्यों के वर्तमान पर्याय का, उनके अपने अपने भविष्यकालीन पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। अब आगे का अन्योन्या भाव हम देखेंगे। ये अन्योन्या भाव क्या होता है उसको हम परिभाषा पढ़ेंगे 44 पृष्ठ पर। अभी तक हमने 6 द्रव्यों की पर्यायों की बात देखी है, अब मात्र पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय की बात होगी। कौन से द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य के, वो भी वर्तमान पर्याय की। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय और दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, इनकी बात चलेगी। हम परिभाषा पढ़ते हैं, देखो यहाँ अन्योन्य भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव है। इसको कौन दोहराएगा? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? अन्योन्य अभाव। क्योंकि देखो ये पुद्गल तो हमें दिखाई देता है, इंद्रियों के द्वारा तो हमें पुद्गल ही जानने में आता है, और ये सारे आजू बाजू में पुद्गल के कार्य होते हुए भी पता चल रहा है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं। ये निमित्त नैमित्तिक क्या होता है उसको हम इसके अभाव के बाद देखने वाले हैं। तो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं कि हमें ऐसा लगता है, होता है ऐसा नहीं कहा, हमें ऐसा भासित होता है कि इसके कारण यह कार्य हुआ। कैसे? हमें गर्म पानी चाहिए तो हमने देखा ये अग्नि के कारण ये पानी गर्म हुआ। अग्नि एक क्या है? पुद्गल स्कंद है, वो अग्नि का एक जीवन की बात नहीं हो रही है। अग्नि एक पुद्गल स्कंद है, पानी दूसरा पुद्गल स्कंद है, तो हमने क्या देखा? वह अग्नि है ना, उसके कारण पानी गर्म हुआ। तो आचार्य कहते हैं अग्नि जो है पुद्गल की जो वर्तमान पर्याय है, ये पर्याय क्यों कहा? अग्नि को पुद्गल की वर्तमान पर्याय क्यों कहते हैं? हाँ बोलो। तो अग्नि को अगर द्रव्य कहेंगे तो उसकी पर्याय क्या कहेंगे? हाँ हाँ, क्या अग्नि इटसेल्फ द्रव्य है कि नहीं, हमको निश्चित करना है। हमने छह द्रव्यों के नाम देखे, बोलो छह द्रव्य के नाम क्या है? अग्नि, पानी, वनस, ऐसा है क्या है? हाँ, तो उसमें तो हमने पुद्गल नाम देखा, अग्नि नाम का द्रव्य कहाँ है? तो अग्नि क्या है? देखो परमाणु, पुद्गल का परमाणु द्रव्य है। हम स्कंद को द्रव्य कह देते हैं, पुद्गल कह देते हैं, कहना अलग बात है और होना अलग बात है। हम जो स्कंद है, स्कंद किसे कहते हैं? बोलो स्कंद किसे कहना? हाँ बहुत अच्छा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को हम स्कंद कहते हैं। तो स्कंद द्रव्य है क्या पर्याय है? हम स्कंद को देख रहे हैं तो पर्याय, इस पर्याय को क्या कहते हैं, कैसी पर्याय कहते हैं? पुद्गल की जो स्कंद पर्याय है ना, उसका कोई शास्त्रीय नाम आपको पता है? बहुत अच्छा, समान जातीय द्रव्य पर्याय, सुना है नाम आपने? समान यानी जो एक सदृश, कौन कौन से द्रव्य? सभी परमाणु है तो ये समान जाति के द्रव्य, जैसे हम कहते हैं छह जाति के द्रव्य है इस विश्व में, उसमें से समान जातीय द्रव्य पर्याय ने क्या है, जो समान 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 जो जाति के द्रव्य है उनका जो यहाँ बंध हो रहा है, और ये बंध से जो हमें पर्याय है वो अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय। एक शब्द होता है द्रव्य पर्याय और एक है गुण पर्याय, सुने हैं नाम दो? हाँ, तो गुण पर्याय क्या होती है और द्रव्य पर्याय क्या होती है? क्योंकि अभी हम कार्य देख रहे हैं ना, तो इनके पर्यायों के भी हमें विभाजन, उसके जो कुछ विशेष उसको भी जानना है। हाँ बोलो, द्रव्य पर्याय गुण पर्याय में भेद पता है आपको? आपको पता है, पीछे किसी को पता नहीं है? हाँ आप बता दीजिए। तो अभी हमने जो समान जातीय द्रव्य पर्याय कही वो क्या है? हाँ देखो, यहाँ जो हम दो बातें आती है, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय। जब हम कहते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय तो ये कौन कौन से द्रव्यों में हो सकता है? बोलो, पुद्गल द्रव्य, जीवों में होगी कि नहीं होगी? अनेक अनंत निगोद एक शरीर में रहते हैं, उनकी समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्यों नहीं कहलाएगी? बहुत अच्छा। वहाँ जीव एक जगह एक ही क्षेत्र में एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं, परंतु उनका आपस में कोई बंध नहीं है। एक जीव दूसरे जीव से बंधता नहीं है। क्यों नहीं बनता? हाँ, पुद्गल बनता है और जीव नहीं बनता, क्यों? ये ऐसी पार्शलिटी क्यों? हाँ, बंध जो हो रहा है स्पर्श गुण के, वृक्ष और स्निग्ध जो उसके जो परिणमन है, उसमें जो कोई दो गुण का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसके कारण बंद होता है। और ऐसा स्पर्श गुण कौन कौन से द्रव्य में है? एकमात्र पुद्गल द्रव्य में है। इस कारण पुद्गल द्रव्यों का बंद होकर वो समान जातीय द्रव्य पर्याय होती है, परंतु अन्य कोई भी द्रव्यों में समान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं होती। बात सही ख्याल में आई? एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय होती है। असमान यानी भिन्न भिन्न जाति के दो या अधिक द्रव्य मिलकर उसकी जो पर्याय होती है, तो यह असमान जाति द्रव्य पर्याय का कोई आप उदाहरण देंगे पीछे बैठने वाले? हाँ, जरा विद्यार्थियों को हम पूछ रहे भाई। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। जीव और पुद्गल का क्या समझना? ये जीव वहां बैठे है सिद्ध भगवान, और ये पुद्गल, यह हमारा ये टेबल है। हाँ, जैसे हम कहें मनुष्य पर्याय या कौन सी देव पर्याय, कौन सी जीव एक है अनंत, कौन से पुद्गल है वहां पर? कारमाण वर्गणा भी है, शरीर के परमाणु भी है, ये अभी इकट्ठा एक बंधन रूप से पाए जाते हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। वहां एक जीव द्रव्य है और पुद्गल कितने हैं? अनंत पुद्गल है, और उसकी मिली जुली पर्याय कौन सी है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं पुद्गल के, एक पुद्गल के वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल के वर्तमान पर्याय में अभाव, हम मुख्यतः यहां स्कंदों की बात कर रहे हैं। एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव, ये बात चल रही है, क्योंकि स्कंद भी पुद्गल की वर्तमान अवस्था है, वर्तमान पर्याय है। ये कहने का कारण क्या है? आचार्यों के ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो हमारे आजू बाजू में जो कोई कार्य दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पुद्गल के कार्य हैं, और ये पुद्गल के कार्य एक के कारण दूसरा हो रहा है, ऐसी हमारी मान्यता हो रही है। मैं पूछूं अभी ये टेबल के आधार से ये शास्त्र रखा है कि नहीं रखा है? क्यों? ये टेबल के कारण शास्त्र यहां पर स्थित है कि नहीं है? नहीं है तो ऐसे छोड़ देते अधर? क्यों? तो कहते हैं शास्त्र ये जो एक स्कंद है, टेबल ये दूसरा स्कंद है, तो एक के कारण दूसरा, एक का दूसरे में तो अभाव ही है ना भाई। अब इसको छोड़ दो, ये शरीर की रचना क्यों होती है? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई औदारिक शरीर वाला है, कोई वैकृत शरीर वाला है, ये ऐसे क्यों? हाँ, परिणामों के कारण डायरेक्ट होता है शरीर आता है। हाँ, कर्म के उदय के कारण। तो कर्म का उदय होता है तो ये कौन से कर्म कौन सी वर्गणा से बनते हैं? कारमाण। और शरीर कौन सी वर्गणा से बनते हैं? आहार। तो कारमाण वर्गणा का आहार वर्गणा में अभाव है, तो कारमाण वर्गणा के कारण, देखो कहेंगे तो ऐसा ही, नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना हुई, ये कथन होगा, इसको कहेंगे व्यवहार कथन। परंतु हमें व्यवहार कथन का पहले स्वीकार, व्यवहार जो नए है वो भी सम्यक ज्ञान का अंश है, व्यवहार नए का भी विषय है, होता है, परंतु रियलिटी यानी परमार्थ यानी जो सच देखा जाए तो वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। पहले व्यवहार नए के विषय को बताते हैं, पहले व्यवहार को खड़ा करते हैं, फिर निश्चय उसको काटता है। ख्याल में आती है ना बात? व्यवहार होता ही नहीं, ये बात नहीं है। व्यवहार नय का विषय बताया जाता है, व्यवहार नय से कथन होता है, फिर निश्चय से वस्तु स्थिति बताई जाती है कि ऐसा नहीं है। नेति कहते हैं ना, क्या कहता है निश्चय ने? ऐसा नहीं है। अभी जो बात की थी गुरुदेव ने, पहले व्यवहार को खड़ा करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले तो कहेंगे द्रव्य कैसा है, तो गुण पर्यायों का समूह है, फिर पर्यायों का कथन करेंगे, पर्याय में विकार है कहेंगे, राग है कहेंगे, फिर भगवान आत्मा ने जो निश्चय से बात करनी है तो क्या कहेंगे, वो है नहीं, वो पुद्गल का है, जाने दो। ख्याल में आती ना, पहले व्यवहार को खड़ा किया फिर उसका निषेध किया। यदि है ही नहीं सर्वथा कहेंगे, पर्याय होती ही नहीं सर्वथा कहेंगे, तो वेदांत हो जाएगा। तो हमें भी जब हम कथन करते हैं तो बराबर सही जानकर कथन करना चाहिए। यहाँ जो बातें हो रही है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है उसको अन्योन्याभाव कहते हैं। तो हम क्या मानते, देखो मैंने कितने सुंदर अक्षर निकाले, क्या कहा, मेरे अक्षर कितने, जो हम अभी विचार करेंगे, ये हाथ क्या है, कौन सा द्रव्य, द्रव्य है कि उसकी स्कंद रूप अवस्था है। हाँ, ये हाथ एक पुद्गल स्कंद है, उसमें हमने पेन को पकड़ा, जैसे हमने माना पकड़ा, मैं पकड़ सकती हूँ, है ना, तो ये पेन ये दूसरा पुद्गल स्कंद है, उसमें जो स्याही है वो और तीसरा ही पुद्गल स्कंद है, फिर हमने ये पेपर लिया वो अन्य ही पुद्गल स्कंद है, फिर हमने उसके ऊपर अक्षर निकाले जो तो स्याही का अपना परिणमन है। तो स्याही में और पेपर में अन्योन्या भाव है, स्याही में और पेन में अन्योन्या भाव है, पेन में और हाथ में अन्योन्या भाव है, और मैं तो अन्य ही पदार्थ हूं, मैं तो पुद्गल हूं नहीं ना, तो मेरे में इसमें तो अत्यंत भाव लगेगा, वो हमने अभी सीखा नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, देखो मेरे अक्षर कितने सुंदर है, मैं लिख सकती हूं, ये हमारी मान्यता क्या हो गई। तो आचार्य कहते ये अन्य भाव और अत्यंत भाव को आपने नहीं पहचान, हमारी जो सारी कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या मान्यताएं है, छह सामान्य गुण और चार अभाव को अच्छी तरह से जान लो तो ये इसमें से कुछ नहीं रहेगा। हमारे नेमचंद जी रखियाल वाले जिनसे हम सीखे ना, वो कहते हैं जैसे स्कूल में एक से दस अंक सिखाते हैं और जिसने एक से दस अंक जाने वो पूरे गणित जान सकता है, वैसे जिसने छह सामान्य गुण और चार अभाव अच्छी तरह से जान लिए उसको पूरा विश्व व्यवस्था ठीक तरह से अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो उसमें से अभी हम अन्योन्या भाव देख रहे हैं, ख्याल में आती है, अग्नि से पानी गर्म होता है ये बराबर है कि नहीं बराबर, अग्नि एक पुद्गल स्कंद है, पानी दूसरा पुद्गल स्कंद है, तो हम डायरेक्ट अग्नि पर पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, गमन गर्म करने के लिए क्या होगा, बीच में एक तपेला भी रखना है, तो वो और एक अन्य पुद्गल स्कंद है, सबका एक दूसरे में अन्योन्या भाव है, तो एक के कारण दूसरा हुआ ये कहां से बात आई। हमारे गाड़ी में हमने पेट्रोल भरा तो गाड़ी चली कि नहीं चली, पहले बात आती थी सोनगढ़ वालों की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, क्यों कहते थे, पेट्रोल के कारण गाड़ी चले, तो हमने अभी हम आए ना दुर्गापुरा के पहले सांगानेर के पहले वो बड़ी बड़ी टंकी देखी हमने पेट्रोल की, तो वो भी चलनी चाहिए, वो तो कब की वहीं पर स्थिर है, तो पेट्रोल डाला और बाकी कुछ हमने कुछ स्क्रू निकाल के रखे, अन्य कुछ उसके स्टार्टर ही नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी, तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये फिर हम क्यों डालते हैं, वो निमित्त का कथन हम बाद में देखेंगे, पहले में पहले तो हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है कि एक पुद्गल स्कंद के कारण दूसरे पुद्गल स्कंद का कार्य नहीं होता, क्योंकि दोनों का आपस में अन्योन्या भाव है, प्रत्येक परमाणु में अपना अपना कार्य हो रहा है। अभी परमाणु के भी हम पर्यायों की बात करेंगे, अभी तो हमने स्थूल रूप से एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव देखा, एक पुद्गल परमाणु की जो वर्तमान पर्याय है, एक स्कंद में रहने वाले जो अनंत पुद्गल परमाणु है उसका भी एक परमाणु के पर्याय का दूसरे परमाणु की पर्याय में अभाव है। देखो हम ये जानते हैं ये रुक्षांश और स्निग्धांश क्या है पता है ना, स्पर्श गुण की स्निग्ध और रुक्ष जो पर्याय, स्पर्श गुण की पर्याय कितनी होती है कोई बताएगा मुझे, हाँ बोलो आपके पीछे, हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ कोई मदद करेगा, हाँ आपके बोलो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म किसके पर्याय है? किसके? पुद्गल के स्पर्श गुण की, स्कंदकी के परमाणु की। हाँ, दोनों की? मैं कहूं एक ही किसी की। पुद्गल की आठ पर्याय परमाणु में नहीं हो सकती। सुना है कभी कि नहीं सुना? ये जो चार जोड़ी है ना, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये चार जोड़ी तो स्कंद में ही हो सकती है। परमाणु में दो ही जोड़ी हो सकती है, कौन सी? ये नियमसार में भी बात है, पंचासिका में भी आई है, बोलो। हाँ, रूखा चिकना, क्योंकि परमाणु का बंध होता है तो रूखना चिकना तो होना चाहिए, और हल्का भारी नहीं होता है। कोई भी बोली हो, एक एक जोड़ी बोल दो ना, एक एक का किसी का तो नंबर लग जाएगा। ये बात सुनिए कि नहीं सुनी? परमाणु में स्पर्श की चार जोड़ी नहीं होती, दो ही जोड़ी होती है, और दो जोड़ी में से कोई एक एक उसका अल्टरनेट जो कोई यथा योग्य होगा परिणाम है। आपको लिखना है परमाणु में रूखा चिकना या शीत उष्ण, जिसको हम ठंडा गर्म कहेंगे, ये दो ही अवस्थाओं में स्पर्श गुण की होगी, और स्कंध की चार जोड़ी में से जो कोई चार अवस्था यथा योग्य होगी। नियमसार में भी बात है, ये पंचासिकाय में भी बात है। तो यहां हम देख रहे हैं, जब परमाणु का बंध होता है तो क्या होता है, कोई दो गुण वाला रुक्ष परमाणु है वो किसके साथ जुड़ सकता है? दो के भेद डिफरेंस से जुड़ता है ना, तो चार गुण वाले स्निग्ध के साथ जुड़ेगा या चार गुण वाले रुक्ष के साथ? तो उसका परिणमन कैसा होता है, जब स्कंद बनता है तो दो गुण, देख गुण किसको कहना, गुण किसे कहा है? दो गुण स्निग्धांश या दो गुण रुक्षांश या चार गुण स्निग्धांश या रुक्षांश किसको कहते हैं? हाँ, नहीं मालूम? अच्छा, हम जानेंगे। प्रत्येक पर्याय की शक्ति किसमें नापी जाती है? अविभाग प्रतिच्छेदों में। अभी हम यहां स्पर्श गुण के स्निग्धांश या रुक्षांश किसमें नापेंगे? अविभाग प्रतिच्छेदों में। तो जो जघन्य में जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे स्निग्ध के या रुक्ष के, उसको कहेंगे एक गुण। क्या कहेंगे? किसको? जघन्य में जघन्य को। उसमें और एक बढ़ा दिए जाएंगे तो जो जिसको हम जघन्य कह रहे हैं वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। जघन्य में जो स्निग्धांश या रुक्षांश है उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते? तो अनंत होते हैं, फिर भी उसको जघन्य कह दिया है, उसको एक गुण कह दिया है। जघन्य को क्या कह दिया है? एक गुण। अब वो एक गुण वाला किसी से नहीं बनता, ये सुना है आपने? एक गुण वाले परमाणु कौन से? स्निग्धांश रुक्षांश वाले, दो के डिफरेंस तीन गुण वाले के साथ उनका बंध नहीं होगा, क्योंकि जघन्य का बंध नहीं होता। परंतु उसमें और एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाए, किसमें? मूल अनंत जो जघन्य है उसमें एक बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे दो गुण वाले, और दो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाए तो हम कहेंगे तीन गुण वाले। अब उनका बंध ऊपर के दो के डिफरेंस से, दो के डिफरेंस है ना, दो वाला चार के साथ बंधेगा, तीन वाला है पांच के साथ बंधेगा, पांच वाला है वो तीन के साथ भी बन सकता है, सात के साथ भी बन सकता है। जो अधिक अंश वाले हैं उस रूप वो अन्य उस रूप परिवर्तित होते हैं। तीन अंश वाले जो है, ये है तीन अंश वाला परमाणु कहो या स्कंद कहो, और ये दूसरा स्कंद है पांच अंश वाला, पांच गुण वाला, तो इनका बंध होकर क्या हो गए? सभी सभी पांच गुण वाले हो जाएगी। तो ये पांच गुण वाले के कारण ये तीन गुण वाले पांच गुण वाले रूप हो गए कि नहीं हो गए, हमारा प्रश्न है। क्या पूछा? तीन गुण वाले हैं वो पांच गुण वाले बन जाते हैं जब स्कंद हो जाता है, तो ये पांच वाले के कारण तीन का परिणमन होकर पांच रूप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो स्वतंत्र अपने से हुआ है। क्यों? ये दो स्कंदों में आपस में अन्योन्या भाव है, परमाणु परमाणु की भी बात करेंगे तो परमाणु के भी पर्यायों का आपस में अन्योन्य भाव है। एक परमाणु के कारण दूसरे परमाणु की पर्याय बदल गई है, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। तो प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वतंत्र अपने से होती है, क्योंकि पर का उसमें अभाव ही है। जहां जिसका अभाव है वहां उसका वो कार्य नहीं कर सकते। क्या कहा? एक पुद्गल की परमाणु की पर्याय, परमाणु के ले लो या स्कंद रूप पर्याय ले लो, वो दूसरे स्कंद का या पुद्गल के पर्याय में कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं जीव द्रव्य और सभी पुद्गलों का मैं परिणमन करूं, ये बात कहां से आई? हम किस किस का परिणमन करना चाहते हैं? अनंत पर पदार्थों का। ये शरीर का परिणमन तो हम करना चाहते ही है और मानते भी है। देखो, मैं बोल सकती हूं, मैं हाथ हिला सकती हूं, ये मान्यता क्या है? पर पदार्थों का, ये पर पदार्थ है, मुझसे भिन्न है, इसका कार्य जिसमें मेरा अभाव है वहां का कार्य मैं कर दूं? देखो, जैसे कोई अपराध होता है, बॉम्बे में कोई बड़ा हादसा हुआ है, कोई बॉम्ब स्फोट हुआ, तो यहां हमें पकड़ने के आए, आपने ये किया, या किसी का खून हो गया, तो हम क्या कहेंगे? हम वहां थे ही नहीं ना, आज के इस तारीख में इतने बजे हम यहां पर थे, देखो इतने सारे गवाह हैं, तो हमें सजा होगी उसके लिए? हम वहां थे ही नहीं। वैसे जिस द्रव्य का जहां अभाव है, वो अभाव होते हुए वहां का कार्य वो करे, वो कहां से आई? कारमान वर्गणा का आहार वर्गणा में अभाव है, तो कारमान वर्गणा आहार वर्गणा को बदल दे, ये बात कहां से आई? हम क्या मानते हैं? हमारे अच्छे संयोग है। क्यों भाई? हमारा पुण्य का उदय है। ये पुण्य क्या होता है? वो कर्म होता है। तो कर्म के उदय के कारण पैसा वहां से यहां आ जाए, ख्याल में आते? एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव है, एक पुद्गल के वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल के वर्तमान पर्याय में अभाव है, तो हमारे पुण्य के उदय से हमें ये पैसा मिला, हमें अनुकूलता मिली, ये बात कहां से आई? आप कहेंगे शास्त्र में कथन है ना। हाँ, कथन है, कथन व्यवहार से भी होते हैं, और जिनवानी पूरी व्यवहार नैके कथनों से भरी है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों का कथन करने वाली है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कहीं एक क्षेत्रावगाह संबंध भी है द्रव्यों में, फिर भी उनमें आपस में अभाव है। क्या कहते हैं? संबंध होने पर भी, संबंध ही बात क्या सूचित करते हैं? जहां दो अन्य पदार्थ है वहीं पर हम संबंध बताते हैं, तो उनका आपस में अभाव है ये बात सूचित करता है। फिर भी उसमें देखो हमारी रुचि कहां है? संबंध स्थापित करने में है, क्या उसकी भिन्नता जानने में है, हमें भेद विज्ञान में, फिर भी वहां संबंध कहकर उसमें भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन है। संबंध तो बताएंगे पहले में पहले, और फिर क्या कहेंगे? ये संबंध है ना, ये तेरे से भिन्न है, ये एक के कारण दूसरे का कार्य होता है, ऐसा कहना कहना कहते हैं। ये कहना, इसको क्या कहेंगे? व्यवहार नय का कथन। और ऐसा मानना क्या होगा? मिथ्या। कथन में तो ऐसा आएगा, और कथन में कोई दोष नहीं है। वैसा ही अगर हम मानते हैं, उसी को रियलिटी, उसी को वस्तु स्थिति मानते हैं, तो ये मिथ्या तो होता है। कथन तो ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों समान रहेंगे। ज्ञानी भी कहेगा मुझे बुखार आया था, और अज्ञानी भी कहता है मुझे बुखार आया है। दोनों को मान्यता में, तो दोनों के मान्यता में जमीन आसमान का भेद है, क्योंकि अज्ञानी तो शरीर को ही मैं मानता है, और ज्ञानी तो अपने को ज्ञानमय अनुभव करता है। वो भी डॉक्टर के पास जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा पड़ोसी ना वो बीमार है, उसको जरा इलाज कराओ, तो डॉक्टर कहेंगे जा पड़ोसी को लेके आना, तो क्या कहना? अरे ये है ना शरीर, ये मेरा पड़ोसी है, तो डॉक्टर कहेंगे पहला दूसरा इलाज करेंगे फिर शरीर का करेंगे। तो हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, हमारी मान्यता सुधर जाती है, तो बोली भाषा कुछ अलग नहीं हो जाती। फिर भी अभिप्राय का वहां जो कोई फेर पड़ा है, अंतर पड़ गया है, उसको हमें देखना है। अब यहां जो हम अन्योन्या भाव देख रहे हैं, उसके और भी हम देखेंगे कोई उदाहरण। पहले में पहले अत्यंता भाव किसको कहना, उसको देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अत्यंत भाव की परिभाषा है 48 पृष्ठ पर। अन्योन्य भाव कौन से द्रव्य में देखा हमने? हाँ, पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में। अभी हम अत्यंता भाव देख रहे हैं। अभी तक जो हम प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्य भाव देखे वो सारे पर्यायों पर लागू होते हैं। तो तीनों अभाव कौन से द्रव्य में लागू पड़ते हैं? कौन से द्रव्य के पर्याय में लागू पड़ेगी? तीनों अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्य भाव, कौन से द्रव्य में? सभी द्रव्यों के। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अकेले पुद्गल में तीनों लागू होगे, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो सभी द्रव्यों के पर्याय में लागू होगे, अन्योन्य भाव मात्र पुद्गल के, तो तीनों किस में लागू होते हमने पूछा? पुद्गल द्रव्य में। ख्याल में है? पुद्गल द्रव्य के पर्याय में, वर्तमान पर्याय में। अभी हम देखने जा रहे हैं वो अत्यंत अभाव को देखने जा रहे हैं। अत्यंत अभाव बस उसमें, जिसके ना आपने सुना होगा, उसमें अत्यंत अभाव की दीवार खड़ी है, दादा कहते हैं ना हमेशा, हाँ वज्र की दीवार है। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, इसे अत्यंत अभाव कहते हैं। यह अभाव कौन कौन से द्रव्य में लागू होगा? छह द्रव्यों में। अभी हमें छह द्रव्यों में लागू करना है, हम क्या कहेंगे? जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का धर्म द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का धर्म में है, जीव का आकाश में, जीव का काल द्रव्य में, और जीव का जीव में है कि नहीं है, उसको क्या कहेंगे? उसको भी अत्यंत अभाव कहेंगे। एक ही क्षेत्र में रहने वाले अनंत जीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक निगोद शरीर में अनंत जीव, या दूसरी जगह अनंत की देखना है तो सिद्धालय में देखो, वहां क्या है, 45 या लाख योजन इतनी स्पेस है और उसमें अनंत जीव, तो सबकी एक दूसरे को अवगाहना चलती होगी कि नहीं? वहां पर अवगाहना है कि नहीं? वहां पर एक क्षेत्रावगाह संबंध वहां चल रहा है, फिर भी प्रत्येक का आपस में क्या है? अत्यंता भाव है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक की सत्ता जुदी जुदी है। क्यों अत्यंता भाव है? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग अलग है, जिसको हम स्वचतुष्टय कहते हैं। कौन सा स्वचतुष्टय? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। किसी एक द्रव्य का स्वचतुष्टय दूसरे द्रव्य के स्वचतुष्टय में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तीन काल में, भले वो एक ही क्षेत्र में क्यों न रहते हो। अन्यमति क्या समझते हैं? वो अनंत है कोई, वहां उसमें विलीन हो जाना, यानी अपनी सत्ता का नाश कोई चाहेगा, परंतु उसी को वो मुक्ति मानते हैं। यहां तो कहते वहां अनंत जीव विराजमान है, फिर भी एक जीव का दूसरे अनंत जीवों में अत्यंता भाव है, कोई एक दूसरे में एंटर ही नहीं कर सकता। आप कहेंगे अभी अभी कह रहे हैं ना एक क्षेत्रावगाह, आकाश के एक ही प्रदेश में हम अभी देखते हैं, मान लेते हैं ये निगोद है, इतनी बड़ी अवगाहना नहीं होती निगोद की, पर हम मानने के लिए कहते हैं एक निगोद शरीर है, तो उसमें कितने जीव है? अनंत जीव। कितने अनंत? सिद्ध राशि से भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं, तो इतने अनंत जीव है, तो प्रत्येक की सत्ता अपनी अपनी भिन्न भिन्न है, प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है। तो वहां कहेंगे कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया। स्पर्श नहीं किया का अर्थ समझते हो? समय सार में भी बात आती है ना कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय में रहता है, वो पर द्रव्य को छूता तक नहीं है। तो छूता तक नहीं है द्रव्य, तो जीव द्रव्य तो नहीं छूएगा क्योंकि उसमें स्पर्श गुण ही नहीं है, परंतु एक पुद्गल द्रव्य तो दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता है ना। देखो हमने यहां देखा, इसका स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो? आप कहेंगे भिन्न भिन्न है, एक ही क्षेत्र में देखो, एक कांच का गोला है, उसमें हमने लाइट डाला अंदर, तो उसमें कांच भी है और प्रकाश भी है उसी गोले के अंदर, तो वहां तो एक दूसरे को छुआ कि नहीं छुआ, स्पर्श किया कि नहीं किया? बोलो। एक ही आकाश के प्रदेश में दो भिन्न भिन्न पुद्गल द्रव्य है, तो वो आपस में छूते तक नहीं। क्यों? क्षेत्र भले एक है उनका, फिर भी हर एक का अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जुदा जुदा है। इसको कहते हैं स्पर्शते नहीं है, छूते नहीं है, चूमते नहीं है, ऐसा है ना, समय सार में ऐसा प्रयोग है, तो उसका ये अर्थ है। गुलाब जाम मुंह में रखते तभी उसकी टेस्ट का पता चलता है ना, मीठा लगता है ना, क्या थाली में रखे हुए का मीठा लगता है आपको? बोलो कब मीठा लगता है? तो मुंह में रखा है इसलिए उसकी टेस्ट आई कि नहीं आई? तो कहते हैं जीव उसको छूता तक नहीं। ये जीव जो है वो एक पुद्गल स्कंद है, गुलाब जामुन दूसरा पुद्गल स्कंद है, दोनों में कौन सा अभाव है बेटा? गुलाब जाम और जीव कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव। और मैं जीव द्रव्य और ये जीव, इसमें कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। तो ये मुंह में गुलाब जाम रखा इसलिए मुझे वो मीठा लगा, ये बात सही है कि नहीं सही है? क्यों? आप कहेंगे आपको मुंह में रखे बिना ही मीठा लगता है क्या? क्यों आप पूछेंगे ना? तो अच्छी बात है, कुछ मुंह में रखने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय वो गुलाब जाम के कारण उसने मीठा जाना कि स्वयं की योग्यता से हुई? देखो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो पुद्गल के कारण यहां जीव को ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? दिव्य ध्वनि सुनने से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? बोलो। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरी तो लोग तरसते रह गए, तो दिव्य ध्वनि सुनने से ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ बेटा आप बोलो। हमें निर्णय करना है ना, ये गुरुदेव के प्रवचन में आपने बहुत बार सुनी हुई बात है, वही हम पूछ रहे। कौन बताना चाहता है? दिव्य ध्वनि सुनने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ हाँ, दिव्य ध्वनि भाषा वर्गना का कार्य है और ये जानना ज्ञान का कार्य। जड़ के कारण ज्ञान हो जाए? इतना चेतन पराधीन है, चेतन जो सभी स्व सहित सभी परद्रव्यों का निर्णय करने वाला जानने वाला जो द्रव्य है, वो जड़ के कारण जानता है कि अपने स्वयं के कारण जानता है? तो हमने आज तक क्या माना? अभी कितने बच गए बोलो? हाँ 9:35 तो घड़ी देखने से ज्ञान हुआ कि नहीं? सच बोलो, ख्याल में आती है? ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान के स्वयं की योग्यता से अपने स्व समय पर होती है। जब हम निमित्त नैमित्तिक संबंध देखेंगे तो देखेंगे उसको, सामने निमित्त रूप से घड़ी है या जो कुछ है वो हम देख लेंगे, परंतु जो कार्य होता है, जो पर्याय होती है, वो द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित होता है, कोई अन्य द्रव्य उसको आके परिणमित करावे ऐसी बात 3 काल में नहीं हो सकती। जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य में अपने से होता है, ज्ञान की पर्याय अपने से होती है, कोई गुरु सिखावे और यहाँ ज्ञान हो जाए ऐसे 3 काल में नहीं होता। फिर भी गुरु निमित्त रूप से होगा, पुस्तक निमित्त रूप से होगी, पर निमित्त से कार्य नहीं होता। हमें तो उसकी उपस्थिति देखकर ऐसा ही लगता है अभी तक कार्य क्यों नहीं हो रहा था, उसका तो उत्तर हम ढूंढेंगे जब हम उस विषय पर आएंगे। हमें लगना अलग बात है और वस्तु स्थिति अलग बात है। ट्रेन में हम बैठते हैं, हमारी ट्रेन रुकी है प्लेटफॉर्म पर और हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में क्या हो रहा था? हमारी बाजू वाली ट्रेन विरुद्ध दिशा से जा रही थी, हमें क्या लगा? हम आगे बढ़ रहे। हम दूसरी ओर देखा तो क्या है? अरे हम उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही ये निमित्त से सारे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वैसा है नहीं। क्यों? क्योंकि पदार्थों का एक दूसरे में अत्यंत अभाव होता है, जहां जिसका अभाव है वहां वो उसका कार्य करे, ये बात कहां से आए? कोई भी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय से स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में से छूटकर अन्यत्र जा ही नहीं सकता 3 काल में, तो वह अन्य का कार्य भी नहीं कर सकता। तो अपना कार्य करने में तो समर्थ है ना, तो अपनी भी जिस समय जो यथायोग्य पर्याय होने का धर्म उस द्रव्य में ही विद्यमान है, उसी समय वो स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। देखो अभी जो बात आई ना, सोचना ये चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, चाहना ये चारित्र, अभी बात आई ना किसी भाई ने बताई थी, चाहना, चाह, इच्छा, ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। सोचना तो उसको हम ज्ञान में भी देख सकते हैं, विचार ये ज्ञान गुण की पर्याय रूप से भी उसको हम देख सकते हैं। अकेले सोचना नहीं लिया, चाहना उसकी बात करेंगे। देखो हम यहाँ 48 पृष्ठ पर आते हैं, अभी 5 मिनट है। और देखो अत्यंता भाव के नीचे के पैराग्राफ में बताया, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है। ये स्वचतुष्टय का अर्थ अभी हमने देखा था, क्या है अर्थ? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य की अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ति है, अभाव है। यानी जीव की जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म धर्म सब, पुद्गल की बात करने की, पुद्गल की जीव में धर्म अधर्म आकाश काल में तो है ही है, पुद्गल की पुद्गल में भी नास्ति है। एक पुद्गल द्रव्य के दूसरी पुद्गल द्रव्य में अभाव, उसको उसका नाम क्या है? क्या पूछा? एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, उसका नाम क्या है? हाँ, अन्योन्य भाव। ये लोग अत्यंत अभाव कह रहे हैं। हाँ, क्यों? हमने द्रव्य की बात पूछी है, पुद्गल के वर्तमान पर्याय की दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में अभाव अगर बताएंगे उसको हम अन्योन्य भाव कहेंगे। हमने अभी पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में पूछा है। द्रव्यों का आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अन्योन्य भाव कौन सी द्रव्यों के पर्याय में लगेगा? मात्र पुद्गल की। इतनी बात अभी हम यहां रहे हैं। यहां बात पर्यायों की नहीं अपितु द्रव्यों की हो रही है। अत्यंत अभाव में एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य पांचों द्रव्य में अभाव है, अत्यंत अभाव है। देखो यह तो हमने देखा था। नीचे का हम प्रश्न देखते, तुम कहोगी अन्य सभी पांचों द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, क्योंकि आकाश द्रव्य अवगाहना उसका विशेष गुण है, तो सभी अनंत द्रव्य जो है वो लोकाकाश में है ना। आकाश द्रव्य के अनंत वे भाग जो लोकाकाश है उसमें सभी द्रव्यों को अवगाहना दी जाती है, तो उस आकाश द्रव्य में सभी द्रव्य रहते हैं तो भी उनमें अभाव है? आकाश तो सर्वत्र है, आकाश द्रव्य, क्या इस प्लास्टिक में आकाश द्रव्य है कि नहीं है? इस लकड़ी के अंदर आकाश द्रव्य है कि नहीं है? क्यों है? वो तो सर्वत्र है, आकाश द्रव्य तो सब सर्वत्र फैला हुआ है। अब ये जो लकड़ी के प्रदेश है, ठोस है, ये तो अंदर कुछ पोला तो है नहीं है, ये ठोस है, तो भी अंदर इस इतने क्षेत्र में आकाश द्रव्य है कि नहीं है? है। ये लकड़ी के परमाणु है कि नहीं है? वो भी है। और कौन से द्रव्य यहां पर? हाँ? बोलो, सभी द्रव्य। कौन सा जीव द्रव्य यहां पर है कि नहीं है? आप नहीं कह रहे। इतने क्षेत्र में कोई जीव द्रव्य है कि नहीं है? कौन सा है? अकेला निगोदिया के क्यों लेते हो भाई, पार्शालिटी क्यों करते? पांचों सूक्ष्म एकेंद्रिय पूरे लोकाकाश में ठसोठस भरे, पांचों सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म निगोद नहीं समझे, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म जल कायिक और सूक्ष्म निगोद, ये पूरे ही लोकाकाश में, उनके किसी आधार की जरूरत नहीं होती सूक्ष्म जीवों को, पूरे लोकाकाश में ठसोठस भरे हुए हैं। तो ये जो लोहा है या कोई, ये तो ठोस वस्तु है, उसके आर पार अंदर बाहर सर्वत्र सूक्ष्म जीव तो है ही है। यहाँ धर्म द्रव्य के भी प्रदेश है, अधर्म के भी है, आकाश के तो है ही है, काल द्रव्य होगा कि नहीं उसके अंदर? वो भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, वो भी है। तो यहाँ आकाश द्रव्य ने अन्य द्रव्यों को अवगाहना दी है, तो इसमें आकाश द्रव्य भी है, तो आप कहते उसका आपस में अभाव है, ये कैसे? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फिर प्रश्न देखे, अन्य सभी पांच द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहना देता है तो भी उनमें अभाव है, आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है। हाँ, यही बात बता रही हूँ। दो या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। ये तो संबंध बताया, फिर भी प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न ही रहता है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व भिन्न रहता है। प्रकाश में से कांच में से प्रकाश आर पार जाता है तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है, प्रकाश का भिन्न है। पानी में कपड़ा भिगोया तो कपड़े का अस्तित्व भिन्न है, पानी का अस्तित्व भिन्न है। हमने कहा कपड़ा गीला हुआ, अरे गीला तो पानी है, कपड़ा तो कपड़ा है, क्या नहीं आता है ना। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और उसमें जो सारे एक क्षेत्रावगाह रूप रहने वाले जो अन्य द्रव्य है उनका आपस में कौन सा अभाव है? छह द्रव्य आकाश के एक ही प्रदेश में रहते हैं, उनका आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। और उनका संबंध कौन सा पूछेंगे तो कहना वो एक क्षेत्र। ख्याल में आई ये बात? तो जहां जिसका अभाव है वो उसका कार्य करे, ये बात कहां से आई? हम जीव द्रव्य है और इसी प्रदेशों में शरीर के परमाणु रहते हैं, तो हम शरीर का कार्य करें, ये बात कहां से आई? क्योंकि हमारा और शरीर का आपस में अत्यंत अभाव है, हमारा और कर्मों का आपस में अत्यंत अभाव है। तो हमने कर्म को बांधा, हमने कर्म को उपशमाया, हमने कर्म को क्षय किया, ये बात कहां से आई? फिर भी इसको कहेंगे, ये जो कथन है जिनवानी के, इसको कहेंगे ये व्यवहार कथन है। दो द्रव्यों के मिलकर संबंध बताने वाले, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले कथन है। उसकी और अधिक चर्चा हम शाम को करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।